सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु।
ओम शांति। शांति वन के डायमंड हॉल में बाबा के बेहद परिवार का साक्षात्कार होता है। हम देख रहे हैं बाबा के काफी बच्चे प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। बाबा से मिलने का और दादियों से मिलने का इस पवित्र परिवार के आपस में मिलने का जो आनंद है और जो सुख है, वो ही हमें प्रतिवर्ष खींच कर ले आता है मधुबन में। और सभी भाई बहने जहां भी हैं, अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। सबको पता है कि ज्ञान और योग, धारणा और सेवा, ये चार सब्जेक्ट के पुरुषार्थ द्वारा हम प्रैक्टिकल में कर्मातीत स्थिति को पाना चाहते हैं। आज की साकार मुरली में भी बहुत सूक्ष्म रूप से उनका स्पष्टीकरण था कि ऐसी अवस्था हम प्राप्त करना चाहते हैं जहां सुख और दुख से हम न्यारे हों, कर्मातीत स्थिति माना कर्मों के हिसाब से परे स्थिति को हम पाना चाहते हैं। तो उसमें दो बात आएंगी, कर्मातीत स्थिति पाने से पहले विकर्मा जीत बनना, इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना होगा कि इस ईश्वरीय जीवन के अंदर, इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अंदर अब कोई विकर्म ना हो, कोई भूले ना हो, कोई छोटे मोटे पाप और अवज्ञा ना हो। एक तो प्रैक्टिकल में हमारा ये स्वयं पर अटेंशन हो, ताकि नए कोई कर्मों का हिसाब न बने, और दूसरा जो हिसाब बने हुए हैं पूर्व जन्मों के, उसको हमें बाबा की याद की शक्ति से चुकाने हैं। एक तरफ हमारा ये पुरुषार्थ है, क्योंकि टोटल ड्रामा के हिसाब से हम कहें तो संगम युग के इस अलौकिक जन्म में हमें 63 जन्मों का उधार चुकाना है और 21 जन्मों के लिए हमें जमा करना है। तो जब एक तरफ हिसाब चुकाते हैं तो नया हिसाब नहीं बनाना है, ये अटेंशन रखना है, और बना हुआ हिसाब चुकता होता जाए ये पुरुषार्थ हमें करना है। और दूसरी तरफ हमें ऐसे श्रेष्ठ और सत कर्म करने हैं, और दूसरा ध्यान ये रखना है कि वो सत्कर्म हम ऐसी स्थिति से करें जिसका फल अभी ही खाके पूरा न करें, उस विधि से हम करें ताकि वो पूर्ण रूप से जमा हो जाए, तब तो वो प्रारब्ध बनेगा और सतयुग में हम उससे भोगेंगे। ये दो प्रकार का पुरुषार्थ और ये दो प्रकार के अटेंशन हम सबको रखने हैं। अब उस लक्ष्य और वो पुरुषार्थ करने में जो अभी हमें टॉपिक मिला है वो कैसे हमें हेल्प करता है। बाबा की मुरली में ये शब्द आते हैं, अमानत और खयानत। अलौकिक जन्म जब हम लेते हैं तो इस मर्जी वे जन्म में ब्राह्मण जीवन में अमानत किस रूप से है? सबसे पहली बात ये है कि ब्राह्मण जीवन बाबा से हमें प्राप्त होता है, ब्रह्मा मुख से। ये अलौकिक जन्म हम सभी प्राप्त करते हैं, इसलिए हम सभी स्वयं भी बाबा की अमानत हैं। जैसे बच्चे मात पिता की प्रॉपर्टी है, रचना है, इस प्रकार हम सभी ब्राह्मण बच्चे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, रचना है, हम उनके अमानत, उनकी संपत्ति है, इसलिए हमारे मन और बुद्धि पर बाबा का अधिकार है। तो हमें सदा ये लक्ष्य रहे, ये अटेंशन रहे कि इस मन और बुद्धि पर अब और कोई देहधारी का अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा के हम प्रॉपर्टी हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा से अलौकिक जन्म हमें मिला है, तो हमारी ये सूक्ष्म शक्तियां जो है मन और बुद्धि वो बाबा की है। इसलिए बाबा के मन के लिए ये आदेश है कि मन मना भव। मन मना भव, ये मन के लिए आदेश है कि मन से हमें क्या सोचना है, किस स्थिति में मन को हमें रखना है, कौन सी बातें मन में हमें भरनी है, मन के लिए भी ये डिसिप्लिन बाबा ने हमें सिखाई है। क्योंकि मेरा स्वयं का समर्पण या मैं खुद बाबा की हूं, ये शब्द जब हम कहते हैं तो मैं माना क्या, मैं बाबा की हूं माना, मेरे मन बुद्धि और संस्कार बाबा के हैं। इसलिए रोज मन को बाबा के प्रति समर्पण करना है, मन के लिए कहते हैं ना कि भी वो बच्चे की तरह चंचल है, तो लौकिक में भी माताएं क्या करती हैं, बच्चे को बाप के हवाले कर देती हैं कि भाई आप थोड़ा समय इसको संभालो तो मैं घर के काम कर लूं। माता ऐसा करती है ना, बच्चे को नला धुला के तैयार करके फिर बाप के हवाले करते हैं कि भाई इसको संभालो तो मैं थोड़ा घर का कारोबार कर लूं। तो हमें भी क्या करना है, मन को अगर हम एकाग्र और शुद्ध रखना चाहते हैं, मन के भटकने से मुक्त होना चाहते हैं, तो मन को बाप के हवाले कर देना है कि बाबा अब ये मन आपके पास में रखती हूं। तो मन उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही चलेगा, भटक नहीं जाएगा। हमारा बहुत स्वाभाविक उस पर संयम रहेगा और बुद्धि के लिए बाबा ने हमें बताया है कि बुद्धि योग कहां लगाना है, बुद्धि के लिए कौन सी लक्ष्मण रेखा बाबा ने खींची है। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपना बुद्धि योग या तो बाबा के प्रति, अपने घर परम धाम के प्रति या आने वाली नई दुनिया के प्रति या वर्तमान संगम युग के प्रति बुद्धि योग लगाना है। बाबा ने कहा है ना कि बुद्धि का लंगर अब कलियुगी दुनिया से हटाकर नई दुनिया की ओर लगाना है, इस लोक से हटाकर जिस परलोक या अमर लोक में हमें जाना है, अब हमें वहां बुद्धि को फोकस करना है। तो मन और बुद्धि से विचरण करने के ये क्षेत्र हमारे हैं कि या तो वो स्वचिंतन में रहें या बाबा की स्मृति में रहें, और अगर हमें संसार और व्यक्तियों के लिए सोचना है तो वो शुभ चिंतन के रूप में चले। ये है हमारी ज्ञानेंद्रियां या हमारी सूक्ष्म शक्तियां, उसके लिए बाबा की आज्ञा है, क्योंकि हमने खुद को बाप के हवाले किया है। पहले ये स्लोगन आता था कि पहले जीवन काम के हवाले था, अब राम के हवाले। और जब बाप के हवाले ये जीवन है तो बाबा के हमारे इस मन बुद्धि संस्कार के लिए यही आज्ञा है कि हमें इसका किस प्रकार से उपयोग करना है। अगर तूफान मनसा में आते हैं तो हम उसको समझ ले और खत्म करें। अगर मन से उन विचारों का रस हम लेते हैं तो ये हमारी डिसिप्लिन का भंग होता है। बाबा कहते हैं तूफान आना तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन तूफान भगाना, खत्म करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वहां हमें ज्ञान और योग का उपयोग करके उन विचारों के प्रभाव से मुक्त रहना। आज भी बाबा ने मुरली में बताया है कि अगर आप योगी युक्त हैं, अपनी अशरीरी आत्मभिमानी स्थिति में हैं, तो कोई आपके सामने ऐसे विचार कर नहीं सकता है। और अगर वो करता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पर ये शर्त कि हम अपने मन बुद्धि का उपयोग बाबा के आदेश और श्रीमत के अनुसार करें, और संस्कारों के लिए बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि अनादि आदि परम पवित्र और शुद्ध स्वरूप आप आत्माएं हैं, तो ये हमारी स्मृति में बार बार रहे कि मुझ आत्मा के अनादि अविनाशी संस्कार या स्वभाव या गुण धर्म कौन से हैं। आत्मा के ओरिजिनल गुणों का जो वर्णन बाबा करते हैं कि शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ये हमारे अनादि गुण है, संस्कार है। और आदि जो है वो हमारे देवताई संस्कार है, जिसका वर्णन हम सब करते हैं दिव्य गुणों के रूप में। सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये हमारे आदि संस्कार है। तो हमें तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किन संस्कारों के प्रभाव में आकर के कर्म करना है। तो ये है स्वयं के बारे में कि मैं, जहां मैं शब्द हम कहते हैं, क्योंकि हम स्वयं भी बाबा की अमानत है। अब ये जीवन हमें अपनी इच्छा, अपनी समझ या अपनी मत से नहीं जीना है, लेकिन अब ये जीवन सही ज्ञान जो बाबा ने दिया है, उस सही ज्ञान के अनुसार, अपनी मनमत अनुसार नहीं लेकिन श्रीमत अनुसार, और तीसरा अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन बाबा की आज्ञा अनुसार हमें जीना है। तो स्वयं को जब बाबा की अमानत हम समझते हैं, तो हम अपने मन बुद्धि संस्कार का उपयोग, बाबा ने जो श्रीमत दी है, जो समझ दी है, जो आज्ञाएं दी है, उस अनुसार हम करेंगे। तो प्रैक्टिकल में जो गीत में भी आप सबने सुना कि हम स्वयं चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, हमें अपने जीवन का बोझ महसूस नहीं होगा और अंदर ही अंदर आत्मा विमल बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी, और हम अनुभव करेंगे कि इस पुराने शरीर में रहते हुए मैं आत्मा नई बन रही हूं। ये नव निर्माण का समय है ना, तो पुराने दुनिया में, पुराने शरीर में रहते हुए अंदर ही अंदर इस गुप्त पुरुषार्थ से हम महसूस करेंगे कि मैं आत्मा शुद्ध और नई दिव्य बन रही हूं। अब उसके बाद जब व्यावहारिक जीवन की बात हम करते हैं, तो उसमें दो चीज हमारे सामने है। एक है हमारा ईश्वरीय सेवा का जीवन और दूसरा है लौकिक जीवन। जो घर में रहते हैं या समर्पण है, हर एक लौकिक और अलौकिक दोनों परिवारों से जुड़े हुए हैं, और ये हम समझ लें कि लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीनों कर्तव्यों को संपन्न करेंगे, तीनों पिताओं के प्रति अपने फर्ज को अदा करेंगे, तब हम कर्मातीत बन सकते हैं। तो लौकिक व्यवहार में भी पहले जहां हम मालिक बन के जीवन जीते थे, अपनी गृहस्थी, अपनी रचना समझ करके जीवन जीते थे, वहां बाबा ने हमारा दृष्टिकोण अब बदल दिया है कि अब ये मेरी गृहस्थी नहीं है, क्योंकि मैं भी बाबा का हूं, तो जो मेरी रचना है, मेरा जो परिवार है और मेरी जो प्रवृत्ति है, वो भी अब बाबा की है। जैसे निमित्त बहने, समर्पित बहने एक सेवा केंद्र को संभालने के लिए निमित्त है, इस प्रकार आप इस गृहस्थी को चलाने के लिए, या ये जो 5, 6, 10, 50 आत्माएं हैं, उनकी संभाल के लिए निमित्त है। बाबा कहते हैं कि जहां बच्चों की पालना और संभाल करते हैं तो आप ये दृष्टि रखें कि बाबा ने हमें इन ठाकुरों की पूजा के लिए रखा है। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, ठाकुर की सेवा उससे कहते हैं, तो बाबा ने हमें ये दृष्टि दी कि ये बच्चे भी बाबा के हैं, ये रचना भी बाबा की। तो मालिक बनकर चलते हैं तो हम भारी हो जाते हैं, अधिकार रखते हैं और वहां हमें तकलीफ होने लगती है कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरा क्यों नहीं मानते, मेरी रचना है, मेरा क्यों नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं इस अलौकिक जन्म में बाबा ने सबको क्या बनाया है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इस अलौकिक जन्म में बाबा ने किसी को अधर कुमार नहीं बनाया है। अलौकिक जन्म में हर कोई अपने को क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो पहले के संबंध का अधिकार अब इस अलौकिक जीवन में हम नहीं कर सकते। भाई पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन वो भी ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमार है। तो आज भी जो बाबा ने कहा कि मोह की रग से याद नहीं करना है, दैहिक संबंध के अधिकार से हमें व्यवहार नहीं करना है, लेकिन बाबा ने हमें इस सेवा के लिए निमित्त बनाया है, उस अलौकिक सेवा की दृष्टि से आप सोचेंगे तो बाबा ने कहा कि वो निर्संकल्प स्थिति मानी जाएगी, उसमें कोई विकल्प की बात नहीं रहेगी। इसलिए फिर हम हल्कापन का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कि अब आप अकेले नहीं हैं, बाबा इस जीवन का मालिक है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि अंतिम जन्म में कलयुग के अंत समय जब फाइनली हिसाब हमें चुकाने हैं और बिल्कुल फाइल क्लियर करके वापस घर जाना है, उस समय खुद बाबा हमारा साथी बन जाता है। अब तक जन्म जन्मांतर जो कर्मों के हिसाब बने वो तो माइनस प्लस होते होते वो अकाउंट में लिंगर ऑन होते जाते। भाई पिछले का इतना जमा इतना उधार, फिर इस जन्म का माइनस प्लस हो गया, फिर वो आगे अकाउंट हमारा लिंगर ऑन होता रहा। लेकिन अब अंत के समय जबकि फाइनल हिसाब चुकाने हैं और बिल्कुल फाइल क्लियर करके हमें वापस जाना है, आप सोच सकते हैं कि वो सहज नहीं है, बहुत मुश्किल ये स्थिति है। लेकिन हम बाबा के बच्चों का ये भाग्य है कि ऐसे हिसाब किताब चुकाने की वेला पर बाबा खुद हमारा साथी बन जाता है। और इसलिए आत्मा में हिम्मत रहती है, धीरज रहती है कि चलो जो भी हिसाब किताब है वो मुझे चुकाने हैं, लेकिन बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा की शुभ दृष्टि मेरे साथ है। जैसे बीमारी शरीर की आती है, लेकिन जब हमें अपने संबंधियों का प्यार, सहयोग और सुविधाएं मिलती है, तो वो हिसाब व्यक्ति को ही चुकाने और भोगने होते हैं, लेकिन फिर भी एक आथत मिल जाती है। इसी प्रकार जब हमें अपने कर्मिक अकाउंट को चुकाना है, तो सदा ये हमें स्मृति में रहे कि अब मैं अकेली नहीं हूं, बाबा मेरा साथी है। तो बाबा की याद, बाबा का साथ, बाबा का प्यार आत्मा को मदद करता है उन हिसाब को चुकाने में। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बोझ मुझे दे दो, अब मालिक बनकर नहीं लेकिन ट्रस्टी बनकर, निमित्त और न्यारे होकर उसी परिस्थिति पर आप सोचेंगे तो आप भारी भी नहीं होंगे और सॉल्यूशन भी जल्दी मिल जाएगा। मान लो एक परिस्थिति मेरे सामने है, पर अगर मैं उस परिस्थिति के प्रभाव में हूं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, उस प्रकार अगर मैं उस परिस्थिति के प्रभाव में हूं, तो मैं भारी भी बन जाऊंगी और परिस्थिति मई मेरा चिंतन होने के कारण न मुझे उसका कारण समझ में आएगा, न निवारण मुझे समझ में आएगा, क्योंकि आप उसी में डूबे हुए और उसी में मई होकर के सोच रहे। लेकिन उस परिस्थिति में जब आप डिटैच हो जाते हैं, ट्रस्टी बन जाना माना न्यारा हो जाना, अनासक्त हो जाना, अनासक्त होना माना डिटैच हो जाना। तो जब आप न्यारे बनकर और बाबा से जुड़कर फिर उस परिस्थिति को जब देखते हैं, आप अनुभव करेंगे कि तुरंत कारण भी मिल जाएगा कि ये बात मेरे सामने क्यों आई, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, और तुरंत हमें उसका निवारण भी समझ में आएगा कि इस बात को मुझे कैसे पार करना है। तो हमेशा बाबा से हम ये बात करते रहे कि बाबा ये जो कुछ है, लौकिक रूप से भी जो हिसाब है, संबंध है, जो सिचुएशन मेरी है, अब मैं आपका हूं और मेरा ये सिचुएशन भी आपका है। तो बाबा कहते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति खुद गठड़ी लेके चल रहा हो और उससे ये ऑफर मिल जाए कि भाई आप बोझ उठा के चल रहे हैं, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, तो उससे कितना राहत महसूस होगा। लेकिन वो हंसी में कहानी बताते हैं ना कि एक गांव का व्यक्ति गठड़ी लेके चल रहा था, एक व्यक्ति उससे ऑफर करती है कि भाई आप गाड़ी में बैठ जाओ, वो बैठ जाता है, लेकिन बैठने के बाद भी गठड़ी सिर पर ही रखता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई अब तो आप गाड़ी में बैठे ना, अब तो गठड़ी बाजू में रख दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी गठड़ी है ना। तो जब तक वो मेरापन नहीं जाता है, तब तक हमें बोझ लगता है और हम हल्के नहीं हो सकते हैं, हम राइट परख नहीं सकते, राइट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अटैचमेंट के प्रभाव में बुद्धि है, इसलिए राइट नहीं समझ में आएगा। तो देखो बाबा हमारा कुछ भी हमारा लेता नहीं है। भक्ति में तो हम गाते थे ना, बाबा ने हमें वायदे याद कराए थे ना कि तुम क्या वायदे करते थे, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। भक्ति से ये समर्पण भाव सिखाया जाता है, लेकिन वहां डायरेक्ट भगवान नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल समर्पण भाव आता नहीं है। लेकिन अब तो सन्मुख भगवान आए हैं। बाबा कहते ना, अब ये डायरेक्ट समर्पण का समय। भक्ति में तो तुम इनडायरेक्ट करते थे, देवताओं के आगे, पुजारियों के आगे, गुरुओं के आगे, लेकिन अब हमारा डायरेक्ट समर्पण है क्योंकि सन्मुख में बाबा आए। तो जब बाबा के हवाले करते हैं तो हमारा विवेक स्पष्ट रहता है, निर्णय यथार्थ हम कर सकते हैं। तो ये है प्रैक्टिकल ट्रस्टीशिप, कि अब जो भी रिलेशन है, जो भी साधन है और जो भी धन है, उसका उपयोग मुझे श्रीमत के अनुसार करना है। तब कहेंगे कि सचमुच हमने अमानत के रूप में, क्योंकि मालिक बाबा है और बाबा ने अपने तरफ से अब मुझे निमित्त बनाकर उसके संचालन का कार्य दिया है, ये प्रैक्टिकल में तब कहा जाएगा जब उन संबंधों से व्यवहार और साधनों का उपयोग श्रीमत के अनुसार हम करते। समझो, पत्नी से व्यवहार है, मां बाप से व्यवहार है, भाई बहनों से व्यवहार है, लेकिन ये रिलेशन अब बाबा के तरफ से मुझे मिले हैं। मैं अपने पर्सनल हिसाब किताब से रिएक्ट नहीं करूं, लेकिन बाबा ने क्या सिखाया है उस श्रीमत से मैं व्यवहार करूं, तो कहेंगे कि हम ट्रस्टी। मान लो किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरे पर गुस्सा किया, उस समय मैं अपने आप को ये पक्का कराऊं कि उनका ये व्यवहार अब सिर्फ मेरे से नहीं है, क्योंकि मैं केवल अपने हिसाब किताब से इनके साथ नहीं जुड़ी हूं, अब मैं बाबा के तरफ से उनके साथ व्यवहार में हूं, इसलिए ये मेरे पर नहीं, बाबा से भी ये गुस्सा कर रहा है, इसलिए मुझे मेरे से गुस्सा किया सोचकर मुझे अपने संस्कार से रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन बाबा मेरे स्थान पर होता तो बाबा कैसा व्यवहार करता, बस वो बुद्धि में लाकर मुझे व्यवहार करना है। तो नया हिसाब बनेगा नहीं, और पुराने हिसाब जिसके कारण उसने मेरे पर गुस्सा किया, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे से ही गुस्सा क्यों किया, हिसाब है ना कोई, उसका ऐसा व्यवहार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जरूर मेरा कोई कर्मिक अकाउंट है, लेकिन मैं उसको रिएक्ट नहीं करती हूं और बाबा की श्रीमत अनुसार व्यवहार करती हूं, तो पुराना हिसाब चुकतु हुआ और नया बना भी नहीं। थोड़ा सा हिम्मत, धीरज अपने में रखना होता है, पर आप अनुभव करेंगे कि बहुत हल्के आप होते जाएंगे, और कोई भी व्यक्ति का कैसा भी व्यवहार आपकी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको अंदर से पक्का है कि अब मैं अपने तरफ से, अपने कर्मिक अकाउंट से इनके साथ नहीं हूं, मैं अब बाबा के तरफ से। तो लौकिक संबंध और लौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए अगर हम ट्रस्टी बनकर, बाबा के प्रतिनिधि बनकर चलते हैं बाबा की आज्ञा अनुसार, तो वो प्रवृत्ति और वो संबंध भी हमें बांध नहीं सकेंगे। और आप अंदर से मुक्त होते जा रहे हैं, उसकी निशानी ये है कि उसका कैसा भी व्यवहार, उसमें आई हुई कैसी भी परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकेगी, डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। और दूसरी बात हमारे सामने व्यवहार की, आत्माओं के साथ जुड़ने का दूसरा जो क्षेत्र है वो है अलौकिक जीवन, अलौकिक सेवा के संबंध, अलौकिक परिवार के संबंध। तो अलौकिक परिवार में भी और अलौकिक सेवा के क्षेत्र में भी हमें हमारे मूल लक्ष्य याद रहे कि बाबा ने हमें इस परिवार से क्यों जोड़ा है, बाबा का उद्देश्य क्या है, बाबा ने ये ईश्वरीय परिवार जो जहां है, जिस सेंटर में है, जिस पाठशाला में है, जिस क्लास में है, जो जहां जहां है, हरेक को बाबा ने अलौकिक परिवार दिया। तो ये अलौकिक संगठन किस लिए बाबा ने बना के दिया है, मूल लक्ष्य याद करो। आपस में जुड़ने के लिए नहीं दिया है। कई बार हम क्या करते हैं, बाबा के कारण हम एक दो के परिचय में, एक दो के संबंध संपर्क में आए, लेकिन कई बार बाबा एक तरफ किनारे हो जाता है, हम ही आपस में जुड़ जाते हैं। और एक दो के साथ अलौकिक संबंध के बजाय लौकिक टाइप के संबंध ज्यादा हो जाते हैं। बाबा ने हमें ये ईश्वरीय परिवार और ये ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति दो लक्ष्य से दी है। एक तो हमें आपस में मिलकर एक दो को सावधान कर अपनी उन्नति का प्रबंध करना है और अपने आप को संपूर्ण बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में जब मिलते हो तो ज्ञान और योग की रूरिहान कर। अगर हम तेरी मेरी, इस ज्ञानी की उस ज्ञानी की, इस टीचर की उस टीचर की, इस सेंटर की उस सेंटर की बातें करते हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि हमने इस अलौकिक को भी लौकिक बना दिया है। हम भूल गए हैं कि बाबा ने हमें किस लिए जोड़ा है। तो ये रोज पक्का करो कि एक तो हम आपस में मिले हैं बाबा से मिलने के कारण। अगर मैं व्यक्तिगत बाबा से जुड़ी हुई ना हूं तो मेरा किसी से भी संबंध का कोई सवाल ही नहीं है। मैं बाबा से जुड़ी हूं इसलिए इतने बड़े परिवार से जुड़ी हूं, तो मैं अपने मूल कनेक्शन को ना भूलूं। और दूसरा, बाबा कहते हैं कि बाबा ने आपस में इसलिए संगठन बना के दिया है ताकि हम सावधान रहें, एक दो को जगाते रहें, उन्नति का साधन बनाते रहें और अपने परफेक्शन को प्राप्त करते रहें। बस इसके अलावा हमारा और कोई रिश्ता नहीं, न पैसे की लेन देन, न संबंधों की लेन देन, न एक दो की बातों में इंटरफियर करना। और दूसरा लक्ष्य इसलिए बाबा ने हमें इकट्ठा किया है कि हमें मिल करके बाबा का जो कार्य है विश्व कल्याण का, उसको कंप्लीट करना है। एक अकेला सारे विश्व का कल्याण नहीं कर सकता है, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश देना है, बाबा से जोड़ना है। ये विश्व सेवा का कार्य हम तभी कंप्लीट कर सकेंगे जब हम सब मिलके अपना तन मन धन और मन वचन कर्म लगाएंगे। तो हमें मिलके या तो सेवा करनी है या मिलके पुरुषार्थ करना है, बस और नहीं। तो हम इस अलौकिक संबंध, अलौकिक परिवार, अलौकिक सेवा में हम ट्रस्टी निमित्त भाव से चल सकेंगे, लौकिकता नहीं आएगी और हम वफादार माने जाएंगे कि बाबा ने जिस उद्देश्य से हमें ये साथ दिया और सेवा दी उसका सही उपयोग हमने किया। और तीसरी बात, प्रैक्टिकल ट्रस्टीशिप में एक लौकिक की बात हुई, अलौकिक परिवार और सेवा की बात हुई, और तीसरी कि बाबा के बनने के बाद जो कुछ अच्छाइयां हमारे में आई हैं, जो विशेषताएं हमारे में आई हैं, जो कुछ हमने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उसमें हमें अभिमान न आ जाए, क्योंकि जहां अभिमान आ गया वहां हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है। बाबा कहते जिस गुण, जिस कला, जिस विशेषता का अभिमान आता है वो गुण अवगुण हो जाता है। इसलिए बाबा हमें पक्का कराते हैं कि इस अलौकिक जीवन में हम कितने भी गुणवान बन जाएं, विशेष आत्मा बन जाएं, सेंटर के अनन्य बन जाएं, मुख्य निमित्त बन जाएं, सर्विसेबल बन जाएं, महारथी बन जाएं, बहुत ही कला और विशेषताएं वाले बन जाएं, लेकिन हमें ये याद रहे कि हमें बाबा ने ये विशेषताएं दी। बाबा हमें हर सीजन में ये याद कराते कि विशेषताएं प्रभु देन है, ये भगवान की देन है। कोई ये सोच सकता है कि मेरे में तो ये विशेषता पहले से ही थी, ऐसे नहीं है कि मैं ज्ञान में आया तब मेरे में ये विशेषता आई, मैं पहले से ही ऐसा था। लेकिन आप सूक्ष्मता से सोचिए कि अगर पहले से ही वो गुण हमारे में थे, लेकिन गुण को भी डिविनाइज बाबा करता है, गुण को भी परिपूर्ण, गुण में भी परफेक्शन बाबा लाते हैं। मान लो मेरे में पहले से ही शांति में रहने का गुण है, लेकिन रियल शांति किसको बाबा कहते हैं? सोल कॉन्शियस बनने को। रियल शांति जिसमें आनंद भी समाया हुआ हो, तो वो शांति के गुण की परिपूर्णता या शांति के गुण का डिविनाइजेशन वो भी तो बाबा करते हैं। इसलिए साकार मुरली में बड़े सहज शब्दों में बाबा कहते हैं कि अगर पहले से ही बुद्धिवान थे तो उतरती कला क्यों हुई, उतरती कला क्यों हुई, जो तुम्हारे ताज तिलक और तख्त थे वो तुमने क्यों गंवाए। अमीर चंद से फकीर चंद क्यों बने, बहुत बुद्धि थी तो देवाला क्यों मारा, बाबा कहते हैं ना। तो सद्बुद्धि, सत्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि बाबा देते हैं ना, इसलिए बुद्धि भी बाबा ने दी है, ज्ञान भी बाबा देते हैं, सेवा बाबा की है, क्षेत्र बाबा के हैं, और वो दिव्य बुद्धि प्राप्त होने के बाद, वो सद्ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारे में ये विशेषताएं और ये गुण और शक्तियों के सही उपयोग की बुद्धि आती है। इसलिए अगर इस अलौकिक जीवन में हमने मान लो बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया है और अच्छे अच्छे हम स्वयं बने हैं, लेकिन वो भी बनाने वाला बाबा है, क्योंकि बाबा अगर इतना कांस्टेंट हमें ज्ञान नहीं देता, जगाता नहीं, प्यार नहीं देता, इतना परिवार नहीं देता, पालना नहीं देता, तो हम कहां बन सकते। तो कितने भी हम ऊंचे उठ जाएं, अनन्य बन जाएं, महारथी हो जाएं, तो भी हमें अभिमान नहीं आएगा और बुद्धि सदा बाबा के आगे समर्पित रहेगी। और इसलिए जरूरी है कि रोज हम बाबा के सामने बैठे, संगठन में महावाक्य सुने, रोज बाबा की याद की प्रैक्टिस करें। हमने एक बार कुंभ मेले में ये देखा था, सारा दिन कुंभ मेले में हम सेवा में रहते थे और रात को हम कुंभ मेला देखने जाते थे, तो हमने देखा कि सभी पंडाल में सभी साधुओं के जो अपने अपने टेंट लगते थे, दिन भर वो साधु खुद प्रवचन करते थे और रात को भजन होते थे और उसमें वो खुद सुनने के लिए बैठते थे। तो एक संत अपने विद्यालय के समीप थे, तो हमने उनसे पूछा कि सारा दिन तो आप खुद भाषण करते हैं और अभी आप खुद भजन सुनने बैठे हैं, तो उसने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि सारा दिन हम भाषण करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो हो सकता है हमारे में अभिमान विकसित हो, पर रात को जब हम भजन सुनते हैं और उसमें भगवान के आगे समर्पण भावना की बातें सुनते हैं कि भजन करने वाले मंच पर बैठते हैं और हम साइड में बैठ के सुनते हैं, तो नम्रता का बैलेंस बना रहता है। तो बाबा भी हमें क्यों कहते हैं कि अंत तक ज्ञानामृत पीना है, रोज बाबा के सामने जाके बैठना है, याद का अभ्यास करना है, ताकि समर्पण बाबा के प्रति बना रहे और निमित्त बनकर के भी हम जो सेवा करते हैं उससे हमारे में सूक्ष्म अभिमान विकसित ना। कई बार बहुत रॉयल रूप से हम खुद अपनी सेवा का वर्णन करते हैं और तो उसमें भी क्योंकि समझो हम ज्ञान दान देते हैं, सेवा का रिटर्न हमें मिलता है, क्योंकि बाबा निराकार है, गुप्त है। प्रैक्टिकल में हम निमित्त बनते हैं ज्ञान दान के लिए, सेवा करने के लिए, और उस सेवा के रिटर्न में हमें महिमा मिलती है, मान मिलता है, विशेष स्थान मिलता है, हमारी शान होती है। तो वो स्वीकार अगर हम करते हैं, अंदर से थोड़ा भी हमें वो आता है, तो वो हमारा अमानत में निमित्त भाव नहीं रहा, है ना। इसलिए बाबा के महावाक्य हमें रोज साफ करते हैं, रोज ठीक करते हैं, ताकि जो लौकिक अलौकिक जीवन की जो भी अमानत है, चाहे धन साधन स्थान के रूप में, चाहे व्यक्तियों के रूप में, परिवार के रूप में, दोनों रूप में जो अमानत है, उसमें मैंपन नहीं आए, मेरापन नहीं आए, हम भी न्यारे रहे, हल्के रहें और उड़ते जाएं, ये तब हो सकता है। ओम शांति।
रख लूं दिल के साथ तुम्हें, ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। तो आके कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।